मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपके सिलेबस के अंतर्गत सेकेंड यूनिट है भारतीय समाज का स्वरूप, इसका दूसरा है सांस्थानिक आधार, इसके अंतर्गत आपका अगला अध्याय है नातेदारी व्यवस्था, जिसकी भूमिका निम्न प्रकार है। परिवार तथा विवाह के साथ ही नातेदारी भी एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। वास्तव में सामाजिक विकास के आरंभिक काल से ही व्यक्ति पारस्परिक संबंधों को इस तरह व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया गया जिससे उसका सामाजिक और मानसिक जीवन सुरक्षित बन सके। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने के लिए केवल परिवार के सदस्यों के संबंधों को ही व्यवस्थित करना आवश्यक नहीं होता, परन निकट संबंधों के साथ स्थापित होने वाले संबंधों को भी व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। मानव समाज में नातेदारी व्यवस्था का विकास इन्हीं प्रयत्नों का एक संयुक्त परिणाम है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों पर निर्भर होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वे होते हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। विवाह और रक्त से संबंधित सभी व्यक्तियों से हमारे संबंध समान प्रकृति के नहीं होते। कुछ व्यक्ति हमसे अधिक निकट होते हैं जबकि कुछ में यह निकटता तुलनात्मक रूप से कम होती है। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत कुछ सामाजिक नियम एक व्यक्ति को कुछ दूसरे व्यक्तियों से विवाह अथवा रक्त के द्वारा जोड़ते हैं, नातेदारी व्यवस्था कही जा सकती है। इस समाज में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जटिल और औद्योगिक समाजों की तुलना में जो समाज सरल तथा कृषि प्रधान होते हैं उनमें नातेदारी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। हेडिंग है परिभाषाएं तथा विशेषताएं। लुइस मार्गन, रेडक्लिक ब्राउन, मार्डॉक, लेवी स्ट्रॉस, हेरी नमेन तथा कपाड़िया आदि अनेक मानव शास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने नातेदारी को परिभाषित करके इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। इन विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं के आधार पर सरल रूप में यह कहा जा सकता है कि नातेदारी रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों संबोधनों की वह व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है। उदाहरण के लिए पितामह पिता तथा पुत्र के संबंध रक्त पर आधारित हैं, जबकि पति पत्नी तथा उनके माता पिता के संबंध विवाह पर आधारित हैं। इन दोनों पक्षों से संबंधित अनेक पीढ़ियों तक के व्यक्तियों के बीच भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भांजा, ससुर दामाद आदि के संबंध विभिन्न समूहों में भिन्न भिन्न संबोधनों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे सभी संबोधनों की व्यवस्था को ही नातेदारी कहा जाता है। रॉबिन फॉक्स ने लिखा है कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों से है, या स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित समान रक्त वाले हों। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। इससे स्पष्ट होता है कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ व्यक्तियों के उन प्रथागत संबंधों से है जो एक वंश अथवा कुल से संबंधित होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से नातेदारी व्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, यह व्यवस्था उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करती है जिनके बीच रक्त अथवा विवाह के संबंध पाए जाते हैं। रक्त संबंधों का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है क्योंकि परिवार में किसी गोद लिए बच्चे को भी अपने माता पिता का रक्त संबंधी ही माना जाता है। तीसरा, नातेदारी संबंध समाज द्वारा स्वीकृत कुछ नियमों के अनुसार स्थापित होते हैं। विभिन्न समाजों में इन नियमों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही विभिन्न समाजों में नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। हेडिंग है नातेदारी के प्रकार। नातेदारी का संबंध मुख्यतः उन व्यक्तियों से होता है जो एक दूसरे से रक्त अथवा विवाह के द्वारा जुड़े होते हैं। इस आधार पर नातेदारी के निम्नांकित दो स्वरूप हैं। पहली हेडिंग है रक्त संबंधी नातेदारी। इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं अथवा जिनमें समान रक्त होने की संभावना की जाती है। उदाहरण के लिए माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा बुआ, नाना नानी, मामा आदि में समान रक्त होने की संभावना के कारण इन्हें रक्त संबंधी नातेदारी कहा जाता है। रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना आवश्यक नहीं होता। गोद लिए गए बच्चे भी अपने माता पिता के रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। इसी प्रकार जिन जनजातीय समूहों में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है वहाँ उसकी संतानों का अपने सभी पिताओं से रक्त संबंध मान लिया जाता है। दूसरी हेडिंग है विवाह संबंधी नातेदारी। यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, विवाह के द्वारा एक व्यक्ति केवल अपनी पत्नी से ही संबंधित नहीं होता, अपितु अपनी पत्नी के भाई बहनों, माता पिता, भाई की पत्नी, बहन के पति तथा उसके बच्चों आदि से भी संबंधित होता है। इसी प्रकार एक स्त्री विवाह के द्वारा केवल अपने पति से ही संबंधित नहीं होती, पर पति के माता पिता, भाई बहनों, भाई की पत्नियों, बहनों के पतियों तथा वंश के अन्य लोगों से भी संबंधित हो जाती है। ऐसे प्रत्येक संबंध के द्वारा उसे वंश में एक विशेष प्रसिद्धि मिलती है, यही विवाह संबंधी नातेदारी है। हेडिंग है नातेदारी की श्रेणियां। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को निकटता समान नहीं होती। कुछ व्यक्ति रक्त अथवा विवाह के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि कुछ लोगों से हमारा संबंध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से होता है। नातेदारी व्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों की निकटता एक दूसरे से कितनी अधिक या कम है, इसे सभी नातेदारों को निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है प्राथमिक नातेदार। जिन व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है, उन्हें एक दूसरे का प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। श्यामचरण दुबे ने प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत 8 संबंधों का उल्लेख किया है, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन तथा पति पत्नी। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक नातेदार वे हैं जिनका रक्त अथवा विवाह के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इन संबंधों के बीच में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आता। दूसरी हेडिंग है द्वितीयक नातेदार। जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं, वे हमारे द्वितीयक नातेदार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पिता से जन्म मिलने के कारण रक्त के आधार पर पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, जबकि दादा का हमारे पिता से प्राथमिक नातेदार संबंध होने के कारण वह हमारे द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। रक्त के आधार पर ही माता हमारी प्राथमिक नातेदार होंगी, लेकिन माता का हमारे मामा से रक्त संबंध होने के कारण वह हमारे लिए द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। इसी तरह चाचा, ताऊ, बुआ, नानी, बहनोई, भाई की पत्नी आदि भी हमारे द्वितीयक नातेदार हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध अपने प्राथमिक नातेदार जैसे पिता, माता, भाई अथवा बहन के कारण है। तीसरी हेडिंग है तृतीयक नातेदार। वे व्यक्ति जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, उन्हें हम अपना तृतीयक नातेदार कहते हैं। उदाहरण के लिए, अपने पिता अथवा माता की सभी बहनें हमारे द्वितीयक नातेदार होंगे, जबकि उन बहनों, बुआ अथवा मौसी के सभी बच्चों से हमारे संबंध तृतीयक नातेदार के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार सभी फुफेरे, मौसेरे, ममेरे, भाई बहन एक दूसरे के तृतीयक नातेदार होते हैं। तृतीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए चौथी श्रेणी के नातेदार होते हैं, जबकि चौथी श्रेणी के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए पांचवी श्रेणी के नातेदार के अंतर्गत आएंगे। इस तरह नातेदारी श्रेणियों का कितना ही विस्तार किया जा सकता है। नातेदारी की यही श्रेणियां हमें यह बताती है कि किसी विशेष व्यक्ति से हमारा संबंध, वंश संबंध कितनी निकटता अथवा दूरी का है। इसी निकटता अथवा दूरी के आधार पर एक विशेष व्यक्ति के प्रति हमारे पारिवारिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता है। हेडिंग है नातेदारी संज्ञाएं। किसी समाज में नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए विभिन्न श्रेणी के नातेदारों को संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे एक नातेदारी समूह के लोगों के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नातेदारी संज्ञा क्या है, इसे परिभाषित करते हुए मजुमदार ने लिखा है, नातेदारी संज्ञाएं वे संबोधन है जिनका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के नातेदारों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। मानव शास्त्रीय अध्ययनों में मार्गन ने सबसे पहले कुछ जनजातियों में ऐसे संबंधों के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने नातेदारी संज्ञाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है, जिन्हें वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं तथा विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं कहा जाता है। पहला, वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा। वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा का तात्पर्य ऐसे संबोधन, उन्होंने नातेदारी संज्ञाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है, जिन्हें वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं तथा विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं कहा जाता है। पहली हेडिंग है वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा। वर्गीकृत नातेदारी संज्ञा का तात्पर्य ऐसे संबोधन से है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न श्रेणियों के अनेक नातेदारों को एक समान शब्द से ही संबोधित करते हैं। मार्गन ने अमेरिका की इरास्क्यूस जनजाति में यह पाया कि बच्चे जिस शब्द से अपने पिता को संबोधित करते हैं, उसी शब्द से पिता के भाई, चाचा, ताऊ और मामा भाई, माता के भाई, मामा को भी संबोधित करते हैं। इसी तरह जिस शब्द से माता को संबोधित किया जाता है, उसी शब्द का माता की बहन, मौसी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न जातियों में इस तरह की संज्ञाओं का प्रयोग प्रचुरता के साथ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, भारत के सेमा नागाओं में माँ, चाची, ताई और मौसी के लिए एक ही शब्द अजा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पिता, चाचा, ताऊ तथा मौसा को अप्पू शब्द से संबोधित करने का प्रचलन है। कभी कभी वर्गीकृत संबोधन का उपयोग विभिन्न पीढ़ियों और विभिन्न लिंग के व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के कुकी जनजाति में हेपू शब्द के द्वारा दादा, नाना अथवा ससुर को संबोधित करने के साथ ही इसी शब्द के द्वारा ममेरे भाई, साले और भतीजे को भी संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ है कि यह संबोधन तीन पीढ़ियों तक के केवल अनेक व्यक्तियों के लिए समान है। अंगामी नगाओं में बुरी शब्द के द्वारा बड़े भाई को संबोधित करने के साथ ही पत्नी की बहन, साली, चाची और ताई को भी इसी शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। ऐसे संबोधन का उद्देश्य कुछ विशेष नातेदारों के प्रति समानता की भावना को व्यक्त कर रहा है। दूसरी हेडिंग है विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं। मजुमदार ने लिखा है कि यह वे संबोधन है जिनका उपयोग कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। इसका तात्पर्य है माता, पिता या पत्नी आदि ऐसे संबोधन है जिनका प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए ही किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम केवल उसी व्यक्ति को पिता जैसी संज्ञा से संबोधित कर सकते हैं जो हमें जन्म देने वाली माँ का पति हो, अथवा उस स्त्री को पत्नी कह सकते हैं जिसके साथ हमने विवाह किया हो। इससे स्पष्ट होता है कि विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं मानी हुई नहीं होती बल्कि वास्तविक नातेदारी संबंधों को स्पष्ट करते हैं। वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं तथा विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं की उपर्युक्त प्रकृति से स्पष्ट हो जाता है कि इनके बीच अनेक विभिन्नताएं हैं। इनके बीच पाए जाने वाले प्रमुख अंतर को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं के द्वारा अनेक व्यक्तियों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें एक ही संज्ञा अथवा शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। दूसरी ओर विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं वैयक्तिक होती हैं। दूसरा, वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं के द्वारा कभी कभी विभिन्न पीढ़ियों तथा स्त्री और पुरुष नातेदारों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। ऐसे संबोधन अपने प्रकृति के बहुत सामान्य होते हैं। इनका उपयोग उन समूहों में अधिक होता है जिनकी भाषा में कुछ सीमित शब्दों का ही प्रचलन है। विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं इस अर्थ में विशिष्ट है कि एक विशेष शब्द का प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए ही किया जा सकता है। तीसरा, वर्गीकृत नातेदारी संबोधन माने हुए अथवा काल्पनिक भी होते हैं। दूसरी ओर विशिष्ट नातेदारी संबोधन जन्म और विवाह के वास्तविक संबंधों को स्पष्ट करने के साथ ही यह भी बताते हैं कि एक विशेष नातेदार से हमारा संबंध किस श्रेणी का है। चौथा, साधारणतया वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं का प्रयोग उन सभी नातेदारों के लिए किया जाता है जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक नातेदार होते हैं। इनके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों के भेद को समझना काफी कठिन होता है। विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इससे भी आगे की श्रेणियों से नातेदारी संबंधों को सरलता से समझा जा सकता है। पांचवा, वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं का विकास किस इस कारण हुआ जिससे एक विशेष वर्ग में आने वाले नातेदारों से व्यक्ति की अधिक घनिष्ठता को प्रदर्शित किया जा सके। बड़े और तुलनात्मक रूप से औपचारिक समूहों में विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं का प्रयोग होने से सामाजिक विभेद की प्रकृति अधिक स्पष्ट होने लगती है। विद्वानों का विचार है कि अधिकांश मानव समूहों में नातेदारी संज्ञाएं व्यक्ति को अपने विभिन्न नातेदारों के प्रति कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराती है। इन संज्ञाओं से एक विशेष संस्कृति में व्यक्ति को यह प्रशिक्षण मिलता है कि किस नातेदारी को किस तरह का आदर और सम्मान देना है। क्रोबर ने वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं का कारण जनजातियों में शब्द भंडार का सीमित होना बताया है। क्रोबर के इस विचार को अधिक मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि अनेक विकसित समाजों में भी अनेक नातेदारों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में अंकल शब्द का प्रयोग चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा तथा इसी श्रेणी में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए होता है। अथवा कजिन शब्द का प्रयोग चाचा, ताऊ, मामा तथा फूफा के सभी पुत्रों और पुत्रियों के लिए किया जाता है। हेडिंग, भारत में नातेदारी व्यवस्था। भारतीय समाज के संदर्भ में नातेदारी व्यवस्था को परिवार तथा विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के नियमों के आधार पर ही समझा जा सकता है। वास्तव में किसी भी समाज के संगठन को प्रभावित करने में नातेदारी व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त समूह में विभिन्न नातेदारों के अधिकारों का निर्धारण और संपत्ति का उत्तराधिकारी भी नातेदारी व्यवस्था से ही प्रभावित होता है। यदि हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के नातेदारों को विभिन्न संबंधों के आधार पर विभाजित करें तो मरडाक के अनुसार प्राथमिक नातेदारों की संख्या 8, द्वितीयक नातेदारों की संख्या 33 तथा तृतीयक नातेदारों की संख्या 151 हो सकती है। इसके अतिरिक्त पिता और माता के पक्ष से संबंधित उन नातेदारों की संख्या भी काफी अधिक होती है जो हमारे तृतीयक नातेदारों के प्राथमिक या द्वितीयक नातेदार होते हैं, लेकिन उनसे हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं। इन विभिन्न नातेदारों से संबंधित संबंधों की प्रकृति और रीतियों की अनेक भारतीय समाजशास्त्रियों ने विस्तृत विवेचना की है। इनमें इरावती कर्वे तथा के एम कपाड़िया का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम इरावती कर्वे द्वारा भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित प्रस्तुत विचारों को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। इसकी विवेचना उन्होंने अपने पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में बंधुत्व व्यवस्था में की है। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार पूरे भारत को चार प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, क्योंकि इनमें सामाजिक व्यवहार, वंश परंपरा, जाति विवाह तथा विवाह संबंधी नियमों एवं सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक अंतर है। इन्हें हम उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं। इन चारों क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था के प्रकृति को संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था। इरावती कर्वे ने उत्तर भारत के मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के अधिकांश भाग को सम्मिलित किया है। संस्कृति, भाषा, इतिहास, जातिगत नियमों तथा जाति संबंधी नियमों के आधार पर इन प्रदेशों में कुछ विभिन्नताएं होने के बाद भी नातेदारी से संबंधित विशेषताएं काफी कुछ समान रूप से देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में रक्त से संबंधित नातेदारों तथा विवाह से संबंधित नातेदारों के लिए एक दूसरे से अलग संबोधन का उपयोग किया जाता है। विवाह का सबसे प्रमुख नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की वंश परंपरा के अंदर विवाह अथवा संबंध स्थापित नहीं कर सकता, अर्थात समान पिंड के स्त्री पुरुष का विवाह नहीं हो सकता। उच्च जातियों के सभी लोग अनेक गोत्रों में विभाजित हैं तथा किसी भी पुरुष को अपने गोत्र की स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ क्षेत्रों में एक गाँव के स्त्री पुरुषों के बीच भी विवाह संबंध नहीं स्थापित होता। अनेक समूह ऐसे हैं जिन्हें पुरुष द्वारा पिता के गोत्र के अतिरिक्त माता के गोत्र में भी विवाह नहीं किया जाता। उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली की प्रकृति विशिष्ट अथवा वर्णनात्मक है। प्रत्येक नातेदार को किसी ऐसी संज्ञा से संबोधित किया जाता है जिससे व्यक्ति का अपने नातेदार से संबंध स्पष्ट मालूम हो सके। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को दादा, ताऊ, चाचा या मामा कहते हैं तो इससे स्वयं यह स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति हमारे पिता के पिता, बड़ा या छोटा भाई अथवा माता का भाई है। इसी तरह चचेरा भाई, ममेरा भाई या फुफेरा भाई भी अस्पष्ट शब्द है। तात्पर्य यह है कि रक्त और विवाह से जुड़े कुछ व्यक्तियों के लिए अलग अलग संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। किसी परिवार या वंश की लड़की का विवाह जिस पुरुष के साथ होता है वह उस परिवार का वंश का मान होता है। शाब्दिक रूप से मान का अर्थ है सम्मानित या श्रेष्ठ। इस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में वधू पक्ष की तुलना में वर पक्ष को अधिक ऊंचा माना जाता है। विवाह से संबंधित एक मुख्य नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपजाति के अंदर ही विवाह करना आवश्यक है, जिसे हम अंतर विवाह का नियम कहते हैं। यदि कोई उपजाति अनेक ऐसे समूहों में विभाजित होती है जिनकी सामाजिक परिस्थिति एक दूसरे से कुछ उच्च या निम्न समझी जाती है, तो लड़की का विवाह साधारणतया उस वंश के लड़के के साथ किया जाता है जिसकी परिस्थिति लड़के के वंश से उच्च हो। उत्तर भारत में ममेरे, फुफेरे तथा चचेरे मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह संबंधों की अनुमति नहीं दी जाती है। विभिन्न त्योहारों, उत्सव, अनुष्ठानों के अवसर पर वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को अनेक उपहार दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य वधू पक्ष द्वारा वर की ऊंची स्थिति को स्वीकार करना है। स्पष्ट है कि उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था पितृवंशीय परंपरा पर आधारित है। दूसरा हेडिंग है मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था। इस क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के अधिकांश भाग को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं संस्कृत भाषा पर आधारित है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था का रूप बहुत कुछ उत्तरी क्षेत्र से मिलता जुलता है। इसके बाद भी जिन हिस्सों में द्रविड़ भाषाओं का प्रयोग होता है उनकी नातेदारी व्यवस्था पर पूर्वी क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्थाओं का भी कुछ प्रभाव है। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित कुछ अलग रीतियां हैं। सामान्य रूप से मध्य क्षेत्र में नातेदारी से संबंधित तीन मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह का प्रचलन है, जिसका उत्तर भारत में पूरी तरह अभाव है। दूसरा, अधिकांश जाति समूह विभिन्न गोत्रों में विभाजित है तथा विवाह संबंध अपने गोत्र के लड़के अथवा लड़की के साथ स्थापित नहीं होते। तीसरा, अनेक जातियों में गोत्र के बाहर विवाह करने के साथ ही लड़की का विवाह अपने से उच्च कुल में करने का प्रचलन है। इसके बाद भी पूरे मध्य भारत में इन विशेषताओं का रूप समान नहीं है। उदाहरण के लिए जाट लोगों में माता तथा पिता के गोत्र में विवाह न करने की परंपरा के साथ ही व्यक्ति का विवाह अपने गांव में नहीं किया जाता। ब्राह्मणों तथा वैश्यों में माता पिता नानी तथा दादी के गोत्र में विवाह करने का निषेध है। गुजरात तथा कठियावाड़ क्षेत्र की अनेक जनजातियों में जहां ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह होने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, वहीं उच्च जातियों में ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ समूहों में विवाह एक दो या तीन वर्षों में किसी एक विशेष दिन पर ही आयोजित किया जाता है। सामान्य रूप से राजस्थान और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में उत्तर भारत के सामान्य विवाह के नियमों का प्रचलन है। इरावती कर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के क्षेत्र में उत्तर भारत तथा द्रविड़ संस्कृति का मिला जुला रूप होने के कारण यहाँ उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत से संबंधित नातेदारी नियमों का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ की जनसंख्या का 40% भाग मराठा और कुनबी लोगों का है, जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। कुनबी लोग अनेक बहिर्विवाहों गोत्रों में विभाजित है। इनमें कुछ गोत्रों में साली विवाह का प्रचलन है, जबकि कुछ समूहों में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह का प्रचलन होने के साथ ही चाचा और भतीजे के बीच भी विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। यहाँ अधिकांश गोत्रों का संबंध किसी विशेष पूर्वज के वंश से नहीं है, बल्कि जो लोग समान देवक अथवा देवता की उपासना करते हैं उन्हें समान गोत्र का माना जाता है। समान देवक की उपासना से संबंधित स्त्री पुरुष के बीच विवाह संबंध नहीं होता। मराठा लोग लगभग 96 गोत्रों में विभाजित हैं। यह प्रयत्न किया जाता है कि लड़की का विवाह अपने से भिन्न लेकिन अपने से उच्च गोत्र के लड़के के साथ किया जाए। चचेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बाद भी ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह संबंध करना अच्छा माना जाता है। यहाँ साले विवाह का भी प्रचलन है। उड़ीसा की गौण उराव और खोण जनजातियाँ द्रविड़ भाषा बोलने वाली हैं, जबकि मुंडा और बोडो जनजातियों में मुंडारी भाषा का प्रचलन है। इसका संबंध दक्षिण भारत की संस्कृति से होने के कारण इनकी नातेदारी व्यवस्था में दक्षिण भारत की विशेषताओं का समावेश है। तीसरी हेडिंग है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था। दक्षिण भारत में हम मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों को सम्मिलित करते हैं। इन चारों राज्यों में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इन क्षेत्रों के भी अधिकांश हिस्सों में पितृवंशीय नातेदारी का अधिक प्रचलन है, लेकिन इसके बाद भी नातेदारी व्यवस्था का रूप उत्तर भारत की तुलना में काफी भिन्न है। मुख्य बात यह है कि पितृवंशीय परंपरा के बाद भी यहाँ रक्त संबंधी नातेदारों तथा विवाह संबंधी नातेदारों के बीच किसी तरह के श्रेष्ठता या अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते। दूसरी विशेषता यह है कि दक्षिण भारत में नातेदारी संबंधों की प्रकृति विशिष्ट अथवा वर्णनात्मक न होकर वर्गीकृत अथवा वर्गात्मक है। उदाहरण के लिए तमिल क्षेत्रों में पुत्र के लड़के तथा पुत्री के लड़के दोनों को ही पेरहन कहा जाता है, जबकि पुत्र की पुत्री तथा पुत्री की पुत्री के लिए पेती शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दादा और नाना दोनों को ताता के नाम से संबोधित करने का प्रचलन है तथा दादी और नानी दोनों को ही पाटी शब्द से संबोधित किया जाता है। स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में वर तथा वधु पक्ष के बीच विभेद करने का प्रचलन नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक नियमों का संबंध है, यह नियम भी पति तथा पत्नी पक्ष की समानता को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह किसी लड़के को अपने चाचा की लड़की से विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उसी तरह उसे अपने माँ की बहन की लड़की से भी विवाह करने पर प्रतिबंध है। इसके विपरीत कोई लड़का अपने मामा की लड़की अथवा फूफा की लड़की से विवाह कर सकता है। भारत में अनेक दूसरे क्षेत्रों में जहाँ विवाह के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि किस समूह में अथवा किन नातेदारों से विवाह नहीं किया जा सकता, वहीं दक्षिण भारत में विवाह के नियम इस बात पर जोर देते हैं कि किस समूह में विवाह संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ विवाह से संबंधित तीन नियम मुख्य हैं। दक्षिण भारत की अनेक जातियों में अपनी बड़ी बहन की लड़की से विवाह करने का प्रचलन है, इसे हम मामा भांजी विवाह कहते हैं। दक्षिण भारत के नायरों में भी मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं, लेकिन उनमें इस नियम का प्रचलन नहीं है। दूसरी तरह के विवाह वे हैं जिनमें एक पुरुष अपने पिता की बहन की लड़की से विवाह करता है, इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच होने वाला विवाह कहते हैं। इस नियम के पीछे मान्यता यह है कि जिस परिवार से विवाह के द्वारा एक लड़की को दूसरे परिवार में दिया गया, उसी परिवार से एक लड़की को पहले अपने पहले परिवार में भेजा जाए। इसका तात्पर्य है कि ऐसे विवाह में जब एक लड़की का अपनी माता के भाई के लड़के से विवाह किया जाता है तो विवाह के द्वारा उसे उस परिवार में भेज दिया जाता है जहाँ से उसकी माता आई थी। तीसरा नियम यह है कि विवाह संबंध एक छोटे नातेदारी समूह के अंदर ही स्थापित होते हैं। अधिकांश विवाह एक गांव के अंदर ही विभिन्न नातेदारों के बीच स्थापित किए जाते हैं, जिससे हर आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों के बीच संबंध अधिक मधुर बने रहें। शायद यही कारण है कि दक्षिण भारत में विभिन्न नातेदारों के बीच अधिक अच्छे संबंध पाए जाते हैं तथा सभी नातेदारी मिलजुल कर सामाजिक क्रियाओं को पूरा करते हैं। वर और वधु पक्ष के बीच विभिन्न उपहारों का आदान प्रदान भी काफी कुछ समानता के आधार पर होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वर और वधु पक्ष में से एक दूसरे की तुलना में किसी को भी दूसरे से कम या अधिक महत्वपूर्ण न माना जाए। यही वह विशेषता है जो दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था को उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था से भिन्न रूप देती है। यहाँ विभिन्न जातियों के अंतर विवाह तथा बहिर्विवाह का नियम पाया जाता है, लेकिन इसका रूप मुख्यतः उत्तर भारत से भिन्न है। इसके बाद भी समान रक्त संबंधियों अथवा सपिंड स्त्री पुरुषों के बीच विवाह संबंध नहीं स्थापित होते हैं। चौथी हेडिंग है पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था। पूर्वी भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं यहाँ के अन्य हिस्सों से काफी भिन्न है। कुछ समुदायों में जहाँ उत्तर भारत की नातेदारी विशेषताएं पाई जाती हैं, वहीं इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मुंडारी तथा तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित भाषाओं को बोलने वाले जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनमें कोरकू, नागा, सेमंग तथा खासी आदि प्रमुख जनजातियां हैं। जो लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं उनमें साधारणतया पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवारों की ही प्रधानता है। इसके बाद भी इस क्षेत्र के संथाल तथा हो जनजातियों में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के विवाह का प्रचलन है। नियम यह है कि जब तक किसी लड़के के पिता की बहन अथवा माता के भाई जीवित रहते हैं तब तक उनकी पुत्री से उस लड़के का विवाह नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप फुफेरे तथा ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह के बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती हैं। मुंडा तथा हो जनजातियों में युवा गृहों का प्रचलन है, जिनमें अविवाहित लड़के और लड़कियां साथ साथ रहते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ विवाह संबंधी अनेक निषेध काफी कमजोर पड़ जाते हैं। पूर्वी भारत में विभिन्न समुदायों में भी गोत्र से बाहर विवाह करने का नियम है। एक गोत्र के लोग किसी समान पूर्वज से संबंधित होते हैं अथवा एक गोत्र के सभी सदस्य किसी एक टोटम को मानते हैं। अधिकांश समुदायों में लड़के को किसी लड़की से विवाह करने के लिए उसके माता पिता को एक निर्धारित धनराशि देनी होती है। इस निर्धारित धनराशि का भुगतान लड़के द्वारा विवाह से पहले अपने ससुर के घर के लिए घर में कुछ समय तक सेवा करके भी किया जा सकता है। विवाह के बाद इस क्षेत्र में दंपत्ति द्वारा अपने लिए अलग परिवार की व्यवस्था करने का प्रचलन है। यद्यपि यह इस परिवार में छोटे भाई तथा विधवा माँ को साथ रखा जा सकता है। मुंडारी भाषा बोलने वाले जातियाँ इस रूप में भारत के दूसरे हिस्सों से भिन्न है, उनमें संयुक्त परिवारों का प्रचलन नहीं है। असम की खासी जनजाति में नातेदारी व्यवस्था का रूप मुंडा तथा हो लोगों से भिन्न है। इस जनजाति में दक्षिण भारत के नायरों की तरह मातृवंशीय परिवारों का प्रचलन है। इसके बाद भी नायरों के संयुक्त परिवार में जहां पति केवल कभी कभी अपनी पत्नी के घर में आकर रहता है, वहीं खासी जनजाति में पति अस्थायी रूप से अपनी पत्नी के घर में आकर उसके साथ रहता है। पत्नी के मृत्यु के बाद परिवार की संपत्ति उसकी माता अथवा सबसे छोटी पुत्री को मिल जाती है। यदि कोई विधवा दूसरा विवाह न करे तो परिवार के संपत्ति का आधा भाग उसे दे दिया जाता है। हिंदू परिवारों में जो स्थिति पत्नी की होती है, खासी जनजाति में लगभग वही स्थिति पति की होती है। फिर भी अंतर यह है कि हिंदुओं में पत्नी अपने पति के परिवार का अभिन्न हिस्सा होती है, लेकिन खासी लोगों में पति को अपनी पत्नी के परिवार में केवल एक मेहमान की तरह देखा जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष की तुलना में स्त्रियों को काफी स्वतंत्रता मिलती है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में नातेदारी व्यवस्था का रूप एक दूसरे से बहुत भिन्न है। विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नियमों और मूल्यों में काफी अंतर होने के साथ ही उनके अनुपालन की प्रकृति में भी काफी भिन्नता है। इस विभिन्नता को अंतर विवाह, बहिर्विवाह, परिवार के संगठन, वंश परंपरा की प्रकृति, आवास, उत्तराधिकार, सदस्यों के अधिकारों, विधवा, पुनर्विवाह, यौनिक निषेध तथा विवाह विच्छेद संबंधी नियमों के आधार पर सरलता से देखा जाता है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी समुदाय के सामाजिक संगठन की प्रकृति वहाँ की नातेदारी व्यवस्था से ही प्रभावित होती है। वास्तव में नातेदारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है तथा आधुनिक समाजों में भी विभिन्न संबंधियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।